सत्या त्रिपाठी जी, यूएन न्यूज़ के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिस अग्रीमेंट के 5 साल पूरे होने के मौके पर एक वर्चुअल क्लाइमेट समिट हो रहा है, तो इसी के बारे में हम आपसे कुछ बात करेंगे। आपकी नज़र में कोविड-19 के संदर्भ में पेरिस अग्रीमेंट का क्या महत्व है और इसके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौतियाँ क्या हैं?
पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जो देशों ने जो अपनी अपनी देशों के अंदर क्या करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम, तो अगर वो सबको आप जोड़ते हैं तो वो एक्चुअली 3.2 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी तक जाती है। लेकिन एम्बिशन ये था कि 2 डिग्री तक सीमित रहे। उसके बाद में आईपीसीसी ने हमें ये कहा कि साहब, ये 2 डिग्री तक जो पहले सोचा था, अब हमारे पास इतनी एविडेंस आ चुकी है जिसमें हमें ये लगता है कि हमें 1.5 डिग्री के अंदर रहना चाहिए। और ये संधि बहुत ही बड़ी अहमियत इसको इतनी दी जाती है क्योंकि पहले ही दिन 177 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे। 5 साल गुजर चुके हैं और हालांकि कुछ देश ऐसे हैं और जिसमें भारत है, जो अपना जो भी उन्होंने उस वहाँ पेरिस एग्रीमेंट में बताया था कि हम ये सारे एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो वो उन्होंने किया है एंड दे आर ऑन ट्रैक। बट बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नहीं कर पाए हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब उन कारणों पे ज़्यादा तर्जमा करने की कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें सबको मिलकर के जो कार्रवाई करनी चाहिए वो बहुत ही उम्दे तरीके से करना चाहिए। जो अगला 10 साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि हम लोगों के लिए जो मानव जाति है, ऑल्सो फॉर द प्लानेट।
उसी सिलसिले में पिछले 5 वर्षों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके में आपने क्या सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन देखे हैं?
सकारात्मक परिवर्तन तो काफ़ी देखे हैं। आप जैसे देखिए, अभी पिछले कुछ हफ्तों में जैसे चीन ने कहा कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर जापान ने भी वही बात कही, साउथ कोरिया ने भी वही बात कही, कुछ वक्त पहले स्वीडन ने कहा था कि वो 2045 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सारे देश जो हैं, अगर आप इन सबको मिला लें तो ये करीब 50% इनकी हिस्सेदारी है ग्रीन हाउस गैस जो कि अभी जिसकी बात हम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वायदे करना एक बात है, उसको उस पे अमल करना अलग बात है। तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी मुद्दे ऐसे हैं जिसपे जिस तरह के कार्रवाई होनी चाहिए वो देखने में नहीं आया है। अब एक बात ये लीजिए, जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडी की बात है, ये हम सब जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल हैं तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा, इनका साथ छोड़ना पड़ेगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देनी होगी। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, तकरीबन सारे ही देश, कुछ देशों को छोड़ के विश्व के सारे देश तकरीबन फॉसिल फ्यूल सब्सिडी में करीब $500 बिलियन हर साल खर्चा करते हैं। तो ये एक हाथ में हमें पता है कि हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको सब्सिडी दिए जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, जो गरीब देश हैं उनका ये मानना है कि ये सब्सिडी नहीं देंगे तो जो गरीब लोग हैं जिनको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी रोज़मर्रा की काम कैसे चलेगी। तो वो बात सही है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, तो ये अगर सही तरह से मुहैया नहीं कराएंगे लोगों को तो ये कैसे। तो हर किसी का अपना अपना जो तर्क वितर्क हैं, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। उसे किए बगैर ये क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है तो ये हम पूरा नहीं कर सकते हैं जो 3.2 डिग्री जो कि पेरिस अग्रीमेंट का लक्ष्य है, तो वो वही नहीं पूरा हो पाएगा, और 2 डिग्री या 1.5 डिग्री की तो बात ही छोड़ दीजिए।
क्योंकि हमने अभी पिछले 5 वर्षों की बात की है, क्यों ना हम अगले 5 वर्षों की बात करें। और जैसा आपने कहा कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना पड़ेगा और एजेंडा 2030 अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो अगले 5 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के आसपास सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा? आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा?
देखिए, इसमें 4 चीज़ें हैं जो मेरे विचार में काफ़ी अहमियत रखती हैं। पहली बात यह है कि हमें दूसरे को टोकना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 30 सालों में बहुत सारा बातचीत जो है वो इस मुद्दे पर रही है कि गलती किसकी है, किसकी वजह से हम इस स्थिति में अपने को पाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हमें उसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसी के बारे में ही बात करते रहें तो हम अगले 10 साल में कुछ भी अचीव नहीं करने वाले हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद के अंदर देखना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हो या समाज हो या देश हो, कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जैसे जो कि स्थानीय विषय हैं, जैसे एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, या वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं, जिसमें आप देखेंगे वाटर टेबल जो है वो गिरता जा रहा है बहुत सारे देशों में, केवल भारत में ही नहीं। या फिर आप देखेंगे कि जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मिल करके से टॉक्सिक मिक्स, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जो पब्लिक हेल्थ का मामला है या फिर सारे विश्व की अर्थनीति की बात है, तो ये सब जो है इसमें गहरी बदलाव आना चाहिए। तो इसको कहते हैं वो ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन, जिसमें जो ब्राउन इकोनॉमी है, जिसमें अभी हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, हम उसमें जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको हमने परे करके ये देखा है कि भाई हम कितना रुपया लगा रहे हैं और उसमें कितना कमा रहे हैं। लेकिन प्रकृति अगर आपके साथ नहीं है, जैसे सेक्रेटरी जनरल ने 2 दिन पहले एक बहुत ही उम्दा बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो है जो मानव जाति है ये प्रकृति के साथ भिड़ चली है, तो ये प्रकृति के खिलाफ लड़ाई जो है ये हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकृति के एक बहुत ही छोटे से हिस्से हैं, और अगर हम अपने अहंकार में वो नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारा ही बहुत ही नुकसान होगा, प्रकृति की नहीं। प्रकृति तो करोड़ों साल पहले यही थी और करोड़ों साल बाद भी यही रहेगी, हम ही नहीं रहेंगे। तो ये जो बात जो है मानव जाति को बड़ी अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और अगले 10 साल में जो तीसरा चीज़ जो मैं मानता हूँ, तो उसमें ये कि बहुत सारे देशों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अब जैसे आप भारत की बात लें तो बहुत सारे राज्यों में अभी वो नेचुरल फार्मिंग, जो कि प्राकृतिक कृषि, काफ़ी जोरों पर है। बहुत सारे जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखें तो करीब 10 लाख कृषक जो हैं वो किसान भाई अपने और बहनें वो उसको चला रहे हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये विचार है कि जो 60 लाख किसान हैं उनके राज्य में वो सब प्राकृतिक कृषि अपना लें। और अभी हिमाचल ने भी कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट किया है, महाराष्ट्र में भी ये काफ़ी जोरों पर है, कर्नाटक में भी। तो ये मान के चलें कि जैसे भारत में करीब 14 करोड़ किसान हैं, तो अगर ये सारे प्राकृतिक कृषि अपना लें तो सोचिए किस तरह का एक विश्व स्तर में ये एकदम एक आंदोलन की तरह होगा, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। और चौथी बात जो है, हम काफ़ी देर से इस बारे में सोचते रहें कि भाई किस तरह से कुछ देश कुछ पैसा निकालें अपने, तो उसमें से पैसा निकाल के कुछ और ऐसे देशों को दें जिनकी गलती नहीं थी, उन्होंने पोल्यूट नहीं किया है या क्लाइमेट चेंज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो ये उनकी गलती नहीं है लेकिन उनको भुगतना पड़ रहा है उसका परिणाम जो है, तो उनको कुछ उसमें धन मुहैया कराएं जिससे वो जो बदलाव लाना चाहते हैं वो कर सकें। लेकिन ये हम पिछले 30 साल से इस बारे में काफ़ी बातचीत कर रहे हैं और हमने इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट फॉरवर्ड जिसको कहते हैं प्रगति देखी है, लेकिन वो खास नहीं है।